अरुणिमा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और वो आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अरुणिमा की तरफ देखने लगा। आस्तिक के चेहरे को देखकर अरुणिमा एक पल के लिए डर गई थी, क्योंकि उसकी आंखें बुरी तरीके से लाल थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि इस वक्त आस्तिक अपने मॉन्स्टर रूप में है। लेकिन तभी अरुणिमा का पूरा चेहरा डर से भर जाता है, क्योंकि आस्तिक अरुणिमा के पेट को धीरे धीरे दबाने लगा था। आस्तिक के ऐसे व्यवहार से अरुणिमा एक पल के लिए कांप जाती है, कहीं आस्तिक का ये मॉन्स्टर वाला रूप उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। एक औरत को हराना बहुत आसान होता है, वो किसी भी रूप में हार सकती है, किसी के सामने भी झुक सकती है, लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आती है तब वो औरत नहीं होती है, वो एक माँ होती है। और एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, उसे ये पता हो कि इसमें उसकी हार होनी पक्की है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए वो कोशिश करना नहीं छोड़ती है। अरुणिमा ने गुस्से में आस्तिक के हाथों को झटक दिया और बेड से खड़ी हो जाती है। वो आस्तिक की आंखों में आंखें डालकर उसे देखकर कहती है, मुझे इतना तो पता था आस्तिक, आप एक घटिया और गिरे हुए इंसान हैं, पर आप इतने गिरे हुए हैं ये मैं नहीं जानती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है? आप सच में दिमागी बीमार है, जाइए जाकर पहले अपने दिमाग का इलाज करवाइए। शायद आप भूल रहे हैं कि इस कमरे में, इस बेड पर आपने मुझे जलील किया है। ये वही बिस्तर है जहां पर आपने मेरा बलात्कार किया है, और ये वही कमरा है जहां पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। इतना सब करने के बाद आप मुझसे ये सवाल पूछने का हक भी रखते हैं कि मेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? अरुणिमा का जवाब सुनकर आस्तिक एक पल के लिए चौंक गया था, क्योंकि उसके सामने ये उसकी नाजुक सी और उससे डरने वाली अरुणिमा नहीं थी, ये तो कोई दूसरी ही अरुणिमा थी, जिसके चेहरे पर इस समय आस्तिक के जैसे ही एक्सप्रेशन थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो आस्तिक से टक्कर ले रही है। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा के पास आता है और उसकी ठुड़ी को कस के पकड़ते हुए अपने दांत पीसते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, तुम सही कह रही हो, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे साथ रातें गुजारी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा आज़ादी भी दे रखी है। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी आती हो और कहीं भी जाती हो सकता है तुमने मेरी इसी आज़ादी का फायदा उठाया है। किसी इंसान को इज्जत देने के लिए शायद आप एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला आपको आप कहने की जगह तुम कहना शुरू कर दे तो समझ लेना कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत घटी नहीं है बल्कि खत्म हो गई है। अरुणिमा ने मन में जो आस्तिक के लिए जबरदस्ती की इज्जत बनाई गई थी, आज अरुणिमा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। अब तो ना आस्तिक उसके लिए मायने रखता है और ना ही उसका होना अरुणिमा के लिए मायने रखता है, क्योंकि वो जान गई थी कि ये इंसान सच में दिमागी तौर पर बीमार है, और अगर अरुणिमा ने जल्द ही इससे छुटकारा नहीं पाया तो इसका नुकसान उसके बच्चे को भुगतना पड़ सकता है। अरुणिमा ने आस्तिक के सीने पर हाथ रखा और उसे जोर से एक धक्का दिया। आस्तिक संभल नहीं पाया और पीछे दीवार पर जा लगा था। उसे लगा नहीं था अरुणिमा इस तरीके से उस पर हमला करेगी, लेकिन आज अरुणिमा अपने रौद्र रूप में थी। उसने आस्तिक की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, मेरे पास आने की सोचना भी मत, और गलती से भी ये ख्याल अपने मन में मत लाना कि अब तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। क्या जानना चाहते हो कि मैंने अपनी रातें किसके साथ रंगीन करी हैं और मेरे पेट में किसका पाप पल रहा है? सुनो आस्तिक रायचंद, मेरे पेट में तुम्हारा पाप पल रहा है, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है उसका नतीजा पुण्य तो नहीं हो सकता है। अगर मेरा बच्चा पाप है तो उसके हकदार तुम हो। आस्तिक के चेहरे पर एक भयानक हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, लगता है मुझे तुम्हारी ये जुबान फिर से काटनी होगी। क्या तुम भूल रही हो अगर मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन जान से मार दिया तो? आस्तिक को लगा अरुणिमा इस धमकी से डर गई होगी, लेकिन अरुणिमा के चेहरे पर ना तो कुछ आया और ना ही वो हैरान हुई, उल्टा वो तो आस्तिक पर हंसने लगी थी। आस्तिक का चेहरा हैरानी से भर गया जब अरुणिमा उसके ऊपर पागलों की तरह हंस रही थी। आस्तिक बस हैरानी से अरुणिमा को देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम हंस क्यों रही हो? तो अरुणिमा ने हंसते हुए आस्तिक से कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सबसे पहले उस इंसान की कमजोरी पर वार करते हो जो उस इंसान को तोड़ने के लिए बनी होती है, इसीलिए मैंने अपनी कमजोरी को ही गायब करवा दिया है। आस्तिक हैरानी से अरुणिमा को देखता रह जाता है तो अरुणिमा हंसते हुए कहती है, मिश्री को अस्पताल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है और मेरी माँ भी अब मेंटल असाइलन में नहीं है, उन्हें भी किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। आस्तिक रायचंद, अब तुम सारी जिंदगी ढूंढते रह जाओगे तो भी तुम्हें ना तो मेरी बहन मिलेगी और ना ही मेरी माँ का पता चलेगा। आस्तिक ने जैसे ही ये सुना उसका खून खौलने लगा, उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो रहा था। वो जल्दी से अरुणिमा के पास आता है और उसके गले को पकड़ते हुए दीवार से लगाकर कहता है, तुम मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो, ठीक है, तो अब ये खेल छुपकर नहीं खेला जाएगा बल्कि आमने सामने से खेला जाएगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को ढूंढकर जान से मार दूंगा। लेकिन आस्तिक की बात पर अरुणिमा और तेज हंसते हुए कहती है, कोशिश कर लो। आस्तिक हैरान रह जाता है, अरुणिमा के चेहरे पर आज डर का एक कतरा तक नहीं था बल्कि उसकी आंखों में एक गुस्सा और एक क्रोध था
जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो उसके सारे संघर्ष भी खत्म हो जाते हैं। आस्तिक के हाथ अरुणिमा के गले से हट जाते हैं और वो गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? अगर मैंने तुम्हारी माँ और बहन को मार दिया तो तुम्हारा क्या होगा? अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए नम सिर हिलाया और कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम सिर्फ इंसान की कमजोरी पर वार कर सकते हो और उसे ब्लैकमेल कर सकते हो, जैसे मेरी माँ को कंपनी के नाम पर ब्लैकमेल किया था और मुझसे शादी की, और उसके बाद तुमने धोखे से हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना तुम, यहाँ के राजा साहब हो, सारा शहर तुम्हारे इशारे पर है। अगर सच में ऐसा है तो जाओ ढूंढो उन्हें, कहाँ छुपा रखा है मैंने।